ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार ने जेन जेड शहीद परिवार के कल्याणकारी कार्यक्रम संचालन के लिए अनुदान देने का किया है निर्णय। वीरगंज में स्थानीय प्रशासन द्वारा आज शाम 6 बजे से कल सुबह 8 बजे तक के लिए लगाया कर्फ्यू। संयम, सजगता और सह अस्तित्व बोध के साथ स्थिति को सामान्य बनाने का गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने किया है आग्रह। प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए सभी 77 जिला न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृत के रूप में हुए नियुक्त। और अमेरिका द्वारा बंधक बनाए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को ड्रग्स के मामले में न्यूयॉर्क स्थित एक अदालत में किया गया है पेश। कोलंबिया और मेक्सिको पर भी हमले करने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने जेन जेड शहीद परिवार कल्याणकारी समाज को अनुदान उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद की आज की बैठक ने कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित करने के लिए समाज को अनुदान देने का निर्णय किया है। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने दी। इसके अलावा कई अन्य निर्णय भी मंत्रिपरिषद बैठक में किए हैं। जिला प्रशासन कार्यालय वर्षा ने वीरगंज में आज शाम 6 बजे से कल सुबह 8 बजे तक के लिए कर्फ्यू आदेश जारी किया है। अत्यावश्यक काम के अलावा बाहर न निकलने और निकलना अत्यावश्यक होने पर नजदीकी सुरक्षाकर्मी से समन्वय करने का या 100 नंबर पर फोन करके बाहर निकलने का अनुरोध जिला प्रशासन कार्यालय ने किया है। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि कर्फ्यू के दरमियान अत्यावश्यक सेवाओं वाले वाहनों समेत संचारकर्मियों, पर्यटकों, मानव अधिकार एवं कूटनीतिक नियोग के वाहनों के साथ ही हवाई टिकट के आधार पर हवाई यात्रियों की आवाजाही में सुरक्षाकर्मी द्वारा सहजीकरण किया जाएगा। खबर के मुताबिक वीरगंज में आपसी सद्भाव भड़काने वाले प्रदर्शनों में तेजी आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने आज दोपहर 1 बजे से वीरगंज क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की थी, लेकिन इसके बावजूद वीरगंज के लाठकल्ली, छपकैया, बिरता आदि स्थानों में प्रदर्शन और झड़प न रुक पाने के बाद शाम 6 बजे कर्फ्यू लगा दिया गया। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने कहा कि धमशा और परसा में धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता में पहुंची खलल को लेकर सरकार का गंभीर ध्यानाकर्षण हुआ है। ये बताते हुए कि गृह प्रशासन और संघीय सरकार के स्तर पर होने वाली सुरक्षा की पूर्व तैयारी हो चुकी है। गृहमंत्री अर्याल ने संयम, सजगता और सह अस्तित्व के आधार पर स्थिति को सामान्य बनाने का सभी से आग्रह किया। उन्होंने आज गृह मंत्रालय में विभिन्न संवैधानिक आयोगों के कार्यवाहक अध्यक्षों, सचिवों और पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टेल के समक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालय के आर्थिक वर्ष 2081-82 का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया गया। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आज आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति पोर्टेल के समक्ष महान्यायाधिवक्ता सविता भंडारी ने प्रतिवेदन पेश किया। आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने 36 जिला न्यायाधीशों को तैयार रहने के हिसाब से मुख्य निर्वाचन अधिकृत और निर्वाचन अधिकृत के रूप में निर्धारित किया है। आज ही आयोग ने सभी 77 जिला न्यायाधीशों को मुख्य निर्वाचन अधिकृत निर्धारित किया है। बता दें कि इसी पूस के 25 गते से प्रभावी होने के हिसाब से प्रतिनिधि सभा सदस्य आयन 2074 की दफा 8 के तहत न्याय परिषद के परामर्श पर 88 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन अधिकृत और निर्वाचन अधिकृत नियुक्त किया गया था। आयोग के मुताबिक उन्हें माघ 2 गते से अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने का निर्देश किया गया है। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य संपादन समिति की आज की बैठक में आसन्न राष्ट्रीय सभा चुनाव में पार्टी की रणनीति संबंध में विचार विमर्श हुआ। कांग्रेस मुख्यालय सानेपा में हुई बैठक में राजनीतिक दलों के साथ न्यूनतम सहमति बनाकर आगे बढ़ने संबंध में विचार विमर्श हुआ और इस बारे में अंतिम निर्णय के लिए कल पुनः कार्य संपादन समिति की बैठक बुलाई गई है। ये बात प्रवक्ता डॉ प्रकाश शरण महत ने बताई। बता दें कि राष्ट्रीय सभा चुनाव आगामी माघ 11 गते को होगा। गौरतलब है कि नेपाली कांग्रेस में पार्टी का 15वां महाधिवेशन किया जाए या चुनाव से पहले ही विशेष महाधिवेशन, इस संबंध में विवाद आने के बाद बार बार केंद्रीय कार्य संपादन समिति की बैठक होती आ रही है। पिछली बैठक में बहुमत के आधार पर वैशाख में महाधिवेशन करने का निर्णय होने के कारण असंतुष्ट बने विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूह के दबाव के कारण आज बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक में इस संबंध में कोई सहमति नहीं हुई। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबु राम्ररी आइपुग्नु भयो नि
हजुर राम्ररी पुगे ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड
नमस्ते बाबुजू
नमस्ते आउनु न भित्रै
हुन्छ बाबुजू
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है
उहाँ त बिहानै हो हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न म खाना तयार गर्दै गर्छु है
हस् हस् भाउजू
ओए वाइफाई होला नि पासवर्ड माग्न
त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि
ए हो र
एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार
अब बाकी समाचार पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेके अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पर लगाई गई स्थान हद की रोक को हटा लिया गया है बीते भादर 23 और 24 गते आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं के संबंध में गठित जांचपूछ आयोग ने अध्यक्ष ओली पर विदेश भ्रमण और स्वीकृति के बिना काठमांडू घाटी छोड़ने पर लगाई गई रोक को हटा लिया है आयोग की आज की बैठक ने यह निर्णय किया आयोग के प्रवक्ता विज्ञान राज शर्मा ने बताया कि आंदोलन की घटनाओं के संबंध में तत्कालीन प्रधानमंत्री की हैसियत से उनसे पूछताछ हो चुकी है इसलिए उनके स्थान हद को वापस ले लिया गया है भीमफेदी कूलेखानी काठमांडू सड़क खंड अंतर्गत भीमफेदी गांवपालिका वार्ड नंबर 6 जूरी खेत में हुई सुमो दुर्घटना में मारे गए 6 में से 5 लोगों की शिनाख्त हुई है जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर से मिली जानकारी के मुताबिक मृतकों में पुलिस ने हेटौड़ा उपमहानगरपालिका 4 की निवासी 40 वर्षीय सविता लमसाल हेटौड़ा उपमहानगरपालिका 10 भूटन देवी के कृष्ण प्रसाद भुयाल हेटौड़ा 2 के निवासी 29 वर्षीय निखिल अग्रवाल बिहार के पटना निवासी 42 वर्षीय रजनीश कुमार और बिहार के बेगूसराय निवासी 49 वर्षीय अरविंद कुमार की पहचान की है मृतक एक पुरुष की पहचान होना बाकी है अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को आज न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेश किया गया उन्हें अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स ने कराकस में एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया था निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर ड्रग्स तस्करी के आरोप हैं जिन्हें शनिवार को अमेरिकी हमले में कराकस से जबरन बाहर निकाला गया था इस हमले में कमांडो हेलीकॉप्टरों से उतरे थे जिन्हें फाइटर जेट और नौसेना बलों का सपोर्ट मिला हुआ था ताकि दोनों को पकड़ा जा सके वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कोलंबिया की सरकारों को सीधी धमकी दी है ट्रंप ने कहा है कि इन देशों को भी अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को निशाने पर लिया और उनके देश पर अमेरिका में ड्रग्स भेजने का आरोप लगाया ट्रंप ने दावा किया कि कोलंबिया में इस समय कम से कम 3 बड़ी कोकीन फैक्ट्रियां काम कर रही हैं ट्रंप ने कहा वे कोकीन बना रहे हैं वे इसे अमेरिका भेज रहे हैं बता दें कि पेट्रो ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की निंदा की है और इसे संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है ट्रंप ने मेक्सिको के बारे में भी बात की और आरोप लगाया कि राष्ट्रपति क्लाउडिया शिबनाम का अपने देश पर नियंत्रण नहीं है उन्होंने मेक्सिको में ड्रग कार्टेल के हावी होने का दावा किया ट्रंप ने कहा कि वो कार्टेल से बहुत डरी हुई हैं उन्होंने आगे कहा कि कार्टेल ही मेक्सिको को चला रहे हैं क्यूबा ने कहा है कि वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़ने के अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान उनके 32 नागरिक मारे गए हैं सरकार ने कहा कि मृतक उसके सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्य थे क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल ने कहा कि वे वेनेजुएला के अनुरोध पर मादुरो और उनकी पत्नी को सुरक्षा दे रहे थे क्यूबा ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है वेनेजुएला और क्यूबा की सरकारें लंबे समय से सहयोगी हैं क्यूबा तेल के बदले वेनेजुएला को सुरक्षा सहायता देता रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पत्रकारों से एक बातचीत में मादुरो के लिए काम करने वाले क्यूबा के कई सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने की बात कही थी अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सरकार ने जेनजेट शहीद परिवार के कल्याणकारी कार्यक्रम संचालन के लिए अनुदान देने का किया है निर्णय वीरगंज में स्थानीय प्रशासन द्वारा आज शाम 6 बजे से कल सुबह 8 बजे तक के लिए लगाया कर्फ्यू। संयम, सजगता और सह अस्तित्व बोध के साथ स्थिति को सामान्य बनाने का गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने किया है आग्रह। प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए सभी 70 जिला न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृत के रूप में हुए नियुक्त और अमेरिका द्वारा बंधक बनाए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को ड्रग्स के मामले में न्यूयॉर्क स्थित एक अदालत में किया गया पेश। कोलंबिया और मेक्सिको पर भी हमले करने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।